से नमाज पढ़ने में यह है कि जब तक इमाम इस रुकन में रहे वो तो रहेगा, पढ़ता भी रहेगा, सुभान रब्बिल आला और अजीम 3 मरतबा 5 मरतबा। बाद आइम्मा बहुत सुकून से पढ़ते हैं, तो जब तक वो सजदे रुकू में है हम उसकी तस्बीहात पढ़ते रहें। ताक आदाद में पढ़ना मुस्तहब है, क्योंकि अल्लाह ताला वितर आदाद यानी 3, 5, 7 इसको पसंद फरमाते हैं। अल्लाह ताला खुद ताक यानी एक है और ताक आदाद को पसंद फरमाते हैं, जिसे हदीस कुदसी का मफहूम। तो इसलिए ताक आदाद में पढ़ता रहे, खामोश ना हो, क्योंकि हम लोग आदत बना ली जल्दी जल्दी पढ़। सुभान रब्बिल अज़ीम, इमाम साहब आराम से पढ़ते हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान आ के साथ रब्बिल आला। एक साहब कल कह रहे थे, एक बड़े साहब जो पढ़ते हैं मुशक्क़त हो रही है। मुशक्क़त तो होगी, गाड़ी अगर खड़ी रहे 5-10 साल फिर उसको आप मैकेनिक को दें तो उसको कितनी मुशक्क़त होगी दोबारा सही करने में। तो नौजवानी बचपन तो गुजर गया, नौजवानी में भी हमें ये किसका कसूर है, नौजवानी में भी हमें, जवानी में भी हमें तवज्जो नहीं है। नौजवानी तक अल्फाज दुरुस्त होने में बहुत ज़्यादा मुशक्क़त नहीं होती, लेकिन जब नौजवानी और जवानी भी ढल जाती है तो ज़ाहिर सी बात है ये मशीन इतनी पुरानी हो गई, अब इसको दुरुस्त करने में मेहनत तो होगी। मैंने उनसे यही कहा कि मेहनत करते रहें, और ये अल्लाह ताला का फजल व करम है। रिवायात से पता चलता है जब इंसान अपनी मेहनत मुकम्मल कर लेता है तो फिर अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं, चाहे वो जैसा भी पढ़ रहा। अपनी कोशिश तो उसने पूरी कर ली, लेकिन हम तो कोशिश भी नहीं करते, बस जैसा पढ़ रहे हैं अब क्या सही करें। ये चीज़ गलत है, सही करने की पूरी तरह सही करें, सही करने की पूरी तरह सही करें यानी कोशिश करें, फिर उसके बाद जो कमी बेशी रह जाएगी वो माफ़ होगी। ये नहीं कि हमने बस हम तो क्योंकि हम तो बचपन से हमने पढ़ा नहीं, हमारे वालदैन ने पढ़ाया नहीं, तो हम ये सोचें कि हम अपने वालदैन की बख्शिश का ज़रिया बनना चाहते हैं या पकड़ का ज़रिया बनना चाहते हैं। नहीं पढ़ाया, उनको तवज्जो नहीं हुई, ख़ुद बचपन में बच्चे को भेजते हैं मदरसे, वो चला जाता है डब्बू पर इधर उधर, तो खुद जो है वो खुद ही परेशान होता है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और इस मेहनत पर अजर मिलेगा इंशाल्लाह जितना आदमी करेगा। और इसी तरह ये आखिर की दुआएं हैं, कादा आखिरा की, इसमें भी बाद दफ़ा मुख्तदी जल एक ही दुआ याद है जो रब्बी जालनी मुकीम सलात। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम जो अपने यार गार सैदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला को दुआ सिखाई वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इसी को कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाया वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह, कौन है जो अल्लाह के सिवा माफ़ कर दे। आप इसको सिखा रहे हैं वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, यहाँ ज़मीर बारिश से सिखाया आपके सिवा कौन है अल्लाह जो माफ़ करे। फ़ग़फिर ली, बस आप मुझे माफ़ फरमा दीजिए। मंजूर मौलाना मंजूर नौमानी साहब ने मारिफुल हदीस में हदीस शरीफ नकल किए कि जब बंदा इस तरह कहता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते हैं कि देखो गवाह रहो कि इसने माफ़ी मांगी और ये जानता है कि मेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला नहीं है, तुम गवाह रहो कि मैंने इसको माफ़ कर दिया। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत जुल्म कर लिया, थोड़ा सा बहुत जुल्म कर। वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता, और अगर या अल्लाह आपने माफ़ नहीं फरमाया, वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फिर ली, आपके सिवा कौन माफ़ कर सकता, बस आप माफ़ फरमा दीजिए। वला यग़फिरु ज़ुनूब ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, हमारे हज़रत वाला शेख मुर्शिद रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे ला इलाहा इल्ला अंता, आप ही या अल्लाह आप ही माबूद हैं, आपके सिवा कौन है, हमारा आपके सिवा कोई है भी नहीं। ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक, आप पाक हैं और हम गंदे हैं। इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, हम गंदे हैं, इतनी सी इबारत याद नहीं होती। ये इबारत ऐसी है जो यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो पढ़ी तो मछली के पेट से बाहर आ गए। लिखा है इसके ज़ेल में कि जो दुआओं में इसको पढ़ता है उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन। 3 मरतबा आदमी दुआ में कम अज़ कम पढ़े। तो ये दुआ की एक ही दुआ नहीं है जो रब्बी जालनी हो, बिना जाते मकबूल पढ़े तो इतनी दुआएं हैं कि याद करना भी दुश्वार है सब। लेकिन जब कादा आखिरा में इमाम बैठा है उसके पीछे आदमी पढ़ रहा है तो तो फिर जब तक वो पढ़ता रहे मुक्तदी भी पढ़ता रहे, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। बेशुमार दुआएं कुरान और हदीस की मौजूद है जो मुक्तदी को पढ़ते रहना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक कि आपके मसाइल उनका हल में हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानी शहीद रहमतुल्लाह ताला, जो बहुत बड़े आलिम थे अपने वक्त के और अल्लाह ताला उनसे बहुत काम लिया, जंग प्रेस का मीर खलील रहमान भी उनसे मुतासिर थे, इसीलिए उनको ही जगह दी जंग में जवाब देने के लिए। और बाद में उनका बेटा को मैंने देखा उनके सामने बैठता था, कोई बाशरा नहीं थे ये लोग लेकिन मोहब्बत रखते थे। तो उसमें हजरत ने फरमाया कि अत्तहियात में ये आदमी गौर से सुने और इसको करने की कोशिश करें, मैंने किया है, कभी मैं भी मसबूक हो जाता हूँ, कभी आदमी सफ़र में होता है पता चला पहुँचे दो मिनट लेट, इमाम साहब निकाल दो रकत एक रकत निकल गई, तो मैंने इस पर ख़ुद तजर्बा किया है कि हजरत ने फरमाया जब इमाम के पीछे आदमी बैठा है तो अत्तहियात भी इतना आखादा आखिरा की बात हो रही, आहिस्ता 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 पढ़ेगा यहाँ तक कि उसको आखिर तक लेके जाएगा, अत्तहियातुलिल्लाहि वस्सलावात वस्सलावात वत्तय्यिबात। क़ारी साहब ये तरीका बताएं, जब आपको बहुत आराम से करना है तो उसी लफ्ज़ को दोबारा लें पीछे से, वस्सलात वत्तय्यिबात, तय्यिबात पर रुक जाएं। बहुत से लोग तय्यिबात वस्सलाम अलैका एक सांस में पढ़ते हैं, हमारे और जामा अशरफ मदारिस के मुफ्ती बड़े थे मुफ्ती शाह साहब अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उन्होंने ये मसला बयान फरमाया था कि तय्यबात पे रुकना चाहिए, क्यों तय्यबात तू अस्सलाम वालेका ये तो सही नहीं है कि अरबी अरबी ग्रामर के एतबार, तय्यबात पे रुक के अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी ये बेहतर है, अगर जल्दी है बहुत ज़्यादा जल्दी है तय्यबात तो अस्सलाम वालेका, ये हमज़ा वसली है, ये हमज़ा वसली है उन्होंने फरमाया, तो तय्यबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह, फिर पढ़े व रहमतुल्लाहि व बरकातहु, ऐसा ऐसा पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि इमाम के यानी अकायद आखिरा की बात हो रही है इमाम के करीब तक आप तय्यात पढ़ते रहेंगे, क्योंकि खामोश बैठना सही नहीं है, ऐसे मौके पे खामोश बैठना ठीक नहीं है, लेकिन अगर पहले ख़त्म हो गया फिर इंसान फिर और कुछ नहीं पढ़ेगा फिर, और बाद दफ़ा लोग भूल के पढ़ भी लेते हैं, तो भूल के अगर पढ़ भी लिया तो भी कोई गुनाह नहीं है, दुआ शुरू कर दी अब सोच रहे क्या करें, तो क्योंकि इमाम के पीछे है इमाम ड्राइवर है, हमारी गलतियां माफ़ है, ड्राइवर कहीं भी ले जाए पीछे वाला कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा वहाँ पे अगर भूल के इंसान ने दुरूद शरीफ के बाद कोई दुआ भी पढ़ ली जैसे कि आमतौर पर होता है, क्योंकि जो मसबूक नहीं होते हम तो सही रोज़ाना की तरह पढ़ रहे हैं, भूल के पढ़ ली तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए जब उसको पता है कि अत्तहियात इतनी देर तक पढ़े, तो इसलिए बता रहा हूँ जब सिर्फ अत्तहियात में इतना है तो फिर आम तौर पे इमाम के पीछे खामोश बैठने की गुंजाइश कैसे होगी, उसमें दुआएं पढ़ता रहे जब मसबूक नहीं है, और जब इमाम सलाम फेरे फिर सलाम है। अच्छा मसबूक जो आया और वो उसको जमात देख रहा है इमाम साहब बैठे और चौथी रकत है, पता चल जाता है वक्त 7-8 मिनट हो गए, इमाम जो कायद आखिरा में बैठा है अब ये तैयारी कर रहा है, नियत करने में देर करते हैं 4 रकत नमाज वास्ते अल्लाह के वास्ते वक्त किसके वास्ते नमाज पढ़ी जाती, तो इसलिए ये सब कहना ज़रूरी है अल्लाह अकबर करे नमाज की नियत के, लेकिन अभी उसने अल्लाह अकबर कर रहा था कि इमाम ने सलाम फेर दिया अस्सलाम अस्सलामु अलैकुम, तो हमारे शेख ने मसला बयान फरमाया हुआ है कि और लिखा हुआ है किताबों में, खुद से थोड़ी अल्लाह वाले बयान करते, जहाँ अस्सलाम का मीम निकला वहाँ आपकी जमात की इक्तिदा ख़त्म हो गई, इमाम का अस्सलाम निकला और इक्तिदा का वक्त ख़त्म हो गया, अब उसको चाहिए अलग नमाज पढ़ ले, वहीं ना पढ़े उसको चाहिए पीछे जाके पढ़े, बहुत से लोग वहीं खड़े हो जाते हैं फिर जाने वालों को मुशक्क़त होती है, जब जमात हो गई अब आप घर में भी पढ़ेंगे तो वही बात है, जमात की नमाज तो मस्जिद में होती है ना, जब देर हो गई खुदा ना खास्ता जैसे आम तौर पर होता है जुमे और इतवार को बड़े जोश में गए जुमे का बयान सुन के ऐसा लंबी तान के सोए कि जमात ही निकल गई, तो ये सही नहीं है, तो बेफिक्री की बात, लेकिन जब जमात निकल गई तो अब मस्जिद में आने का कोई ख़ास फ़ायदा है यकीनी तौर पर, अगर उम्मीद है चलो 5 मिनट हुए जाते जाते 2 मिनट में हो सकता है आखिरी रकत फिर आ जाना चाहिए, लेकिन जब जमात निकल गई तो अस्सलाम इमाम ने कह दिया अब हमारी जमात उसके पीछे नहीं, मीम का लफ्ज़ निकल गया अब उसके पीछे जमात नहीं होगी, ज़बरदस्ती रुकू करने से और ज़बरदस्ती उसको इक्तिदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जमात नहीं होगी तो अकेले भी नहीं होगी, जैसे हकीम उल उम्मत से किसी ने पूछा कि जहाँ पे جمعے کی نماز نہیں ہے، گاؤں گوٹوں میں نہیں ہوتی، لوگ زبردستی پڑھتے ہیں، جہاں پہ شہر کی علامات نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں جماعت سے جمعہ نہیں ہو سکتا، ظہر پڑھیں گے۔ تو اس نے پوچھا کہ اگر ظہر پڑھ لی جائے تو کیا حرج؟ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جو ظہر تو ہوگی، جو اگر جمعہ پڑھ لیا جائے تو کیا حرج، جوان جمعہ نہیں ہے۔ فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، جمعہ تو ہوگا نہیں، ظہر ذمہ رہ جائے گی، جمعہ تو ادا نہیں ہوگا کیونکہ وہاں جمعہ ہے نہیں، اور ظہر نہیں پڑھنے کا گناہ ہوگا کیونکہ جمعہ دو ہوتی ہے اور ظہر چار ہوتی ہے، اس کے لیے خطبہ وغیرہ ہے۔ تو جو گاؤں گوٹ ہے بالکل دور دراز، کراچی کے مضافات سے جو لگ رہے ہیں اس کو قیاس نہ کریں، جو بالکل دور دراز کے گاؤں گوٹ ہیں وہاں پہ جمعہ نہیں ہوتا، ان کو اہل علم سے چاہیے کہ اہل علم کو لے جا کے دکھائیں وہاں پہ کہ یہاں جمعہ ہو سکتا ہے یا نہیں، اپنی مرضی سے کرنے میں کیا حرج ہے، صاحب اپنی مرضی نہیں چلے گی، وہ جمعے کی کچھ شرائط ہیں۔ تو پھر ایسی جگہ پہ اگر جہاں پہ جمعہ نہیں ہو سکتا وہاں اگر کوئی جمعہ پڑھے گا تو جمعے کی نماز تو ہوگی نہیں، ظہر سب کی اس کے ذمہ رہ جائے گی، لہذا ایسا کام کرنے کا کیا فائدہ؟ امام نے سلام پھیر لیا، السلام علیکم، ہم پھر بھی لگ گئے نہیں، چلو کچھ نہ کچھ ہمیں مل گئی۔ یہ یاد رہنا چاہیے کہ امام کے السلام کے ساتھ اس کی اقتداء ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اپنی نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مسائل سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام۔